आगे सबक देखिए भाई। वमन जना बि मरअतिन हरुमत अलैहि उम्मुहा व बिन्तुहा व क़ाल अश्शाफ़िई रहिमहुल्लाहु तआला अज़्ज़िना ला यूजिबु हुरमतल मुसाहरति लिअन्नहा निअमतुन फला तुनालु बिल महज़ूर ولنا أن الوطأ سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا فيصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه وكذلك على العكس. گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر ایک شخص دو بہنوں سے نکاح کرتا ہے دو الگ الگ عقد میں تو پہلی کے ساتھ عقد منعقد ہو جائے گا اور دوسری کے ساتھ عقد باطل ہوگا، اس لیے کیونکہ قرآن کے اندر دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، تو دو بہنوں کو نکاح کے اعتبار سے جمع کرنا بھی منع اور دو بہنوں کو وطی یعنی صحبت کے اعتبار سے جمع کرنا بھی منع ہے. اب اگر ایک شخص دو بہنوں سے نکاح کرتا ہے دو الگ الگ عقد کے اندر تو پہلی کے ساتھ عقد منعقد ہو جائے گا اور دوسری کے ساتھ عقد منعقد نہیں ہوگا بھائی. اور اگر دو بہنوں سے کوئی شخص ایک ہی عقد کے ساتھ نکاح کرتا ہے، ایک ہی ایجاب اور قبول میں دونوں بہنوں سے عقد کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھنا ایک کے ساتھ بھی عقد منعقد نہیں ہوگا کیونکہ وہ جمع بین الاختین کر رہا ہے بھائی. تو بہرحال یہاں جو صورت ذکر ہے وہ دو بہنوں سے ایک شخص الگ الگ نکاح کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے پہلا عقد منعقد ہوا ہے اور دوسرا عقد منعقد نہیں ہوا، لیکن وہ شخص بھول گیا کہ کس بہن کے ساتھ پہلا عقد ہوا اور کس بہن کے ساتھ دوسرا عقد ہوا ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ اب تفریق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ان دونوں بہنوں کی اس شخص سے جدائی کروا دی جائے گی، تفریق کروا دی جائے گی. وجہ یہ کہ پہلا نکاح تو منعقد ہوا ہے لیکن دوسرا یقینی طور پر باطل ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا، تعین کی کوئی صورت نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا. اور اسی طرح اس نکاح کو ہم چلنے دیں کہ ہم یوں کہیں لا علی التعین ایک نکاح ہو چکا ہے، تو اسی طرح ہم اس کو نافذ کر دیں، اسی طرح اس کو چلنے دیں، اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آدمی کا، اس کو تو بیوی نہیں ملی، اس کے لیے تو ایک کے ساتھ بھی صحبت حلال نہیں ہے. اور نیز عورتوں کا اس میں نقصان ہے، اس لیے بھی اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ عورتیں معلق ہو جائیں گی، ان کو خاوند بھی نہیں ملا اور معلق ہیں، آگے بھی کہیں نکاح نہیں کر سکتی. تو لہذا اسی طرح جہالت کے ساتھ اس نکاح کو نافذ کر دیا جائے، اس کی بھی کوئی صورت نہیں. تو تعین کی بھی کوئی صورت نہیں، تنفیذ کی بھی کوئی صورت نہیں، تو آخری صورت یہی ہے کہ ان میں جدائی کروا دی جائے گی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خاوند بیوی کو صحبت کے بعد طلاق دیتا ہے، اس سے جدائی اختیار کرتا ہے، تو پھر پورا مہر دینا پڑتا ہے. اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو پھر اس صورت میں نصف مہر دینا پڑتا ہے. اور یہاں پر بھی جو جدائی آئی ہے وہ صحبت سے پہلے آئی ہے، تو لہذا نصف مہر دینا پڑے گا کیونکہ ایک نکاح ہوا ہے، دوسرا تو ہوا ہی نہیں، اور اس ایک کو بھی طلاق دی ہے صحبت سے پہلے، تو نصف مہر آئے گا. لیکن وہ نصف مہر اس بہن کا حق ہے جس کا نکاح پہلے ہوا تھا اور اس کا تو پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اس نصف مہر کو دونوں میں آدھا آدھا برابر تقسیم کر دیں گے. جبکہ فقیہ ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نصف مہر ہے یہ ویسے ہی دونوں بہنوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ دونوں بہنیں قاضی کے پاس دعویٰ کریں، دونوں قاضی کے پاس دعویٰ کریں اور دونوں میں سے ہر ایک کہے کہ میں پہلی بیوی ہوں، میرے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا. اب قاضی کے پاس فیصلے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو لہذا مجبوراً اس کو وہ نصف مہر دونوں میں برابر تقسیم کرنا پڑے گا، یا وہ دونوں بہنیں خود ہی آپس میں صلح کر لیں، تو قاضی کے پاس یا دعویٰ کر لیں یا قاضی کے پاس نہیں جانا چاہتی تو یہیں پر آپس میں کیا کر لیں، صلح کر لیں اور اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں. اور اس کے بعد صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص ایک عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. ایک شخص کے عقد میں ایک عورت ہے और अब वो इस बीवी की फूफी से भी निकाह करना चाहता है, दोनों को अपने निकाह में रखना चाहता है। साहिब हिदाया ने बतलाया कि ये जायज नहीं। इसी तरह किसी औरत को उसकी खाला के साथ एक शख्स के निकाह में जमा करना जायज नहीं। और ये दो मसले थे, लेकिन इनकी दो दो सूरतें साहिब हिदाया ने जिक्र फरमाई कि पहले निकाह किससे किया, मसलन भांजी से निकाह किया है और फिर खाला से निकाह करना चाहता है तो ये जायज नहीं। या दूसरी सूरत, पहले खाला से निकाह किया है और अब भांजी से निकाह करना चाहता है, ये जायज नहीं। जबकि फूफी वाले मसले में भी दो सूरतें बना ली, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया है यानी भतीजी से पहले निकाह किया है और अब उसकी फूफी से निकाह करना चाहता है, नहीं भाई दोनों को जमा नहीं कर सकता। या इसका बरअक्स कर लें कि पहले फूफी से निकाह किया और फिर उसकी भतीजी से निकाह करना चाहता है तो यह जायज नहीं। तो सवाल पैदा हुआ कि यह मतन तो लंबा हो गया, एक ही मसले को दो अलग अलग सूरतों के साथ जिक्र कर दिया। तो मैंने बतलाया था क्योंकि हदीस के अंदर इस तरह आया है इसलिए साहिबे कुदूरी ने भी इन दोनों को जमा फरमा दिया भाई। और हदीस में इसलिए जमा आया है क्योंकि किसी इंसान के जहन में शुबा आ सकता है कि अगर किसी के आकद में आला औरत हो तो आला के होते हुए अदना के साथ निकाह जायज नहीं होता, लेकिन अगर अदना हो निकाह में पहले और फिर आला से निकाह करना चाहता है तो वो जायज होता है। मसलन देखो, कोई शख्स जब निकाह करना चाहता है उसको इजाजत है, वो चाहे तो आजाद औरत से निकाह करे और चाहे तो बांदी से निकाह करे
जी।
बांदी का चूंकि महर कम होता है तो अगर एक शख्स के पास माल कम है या वैसे ही वो बांदी से निकाह करना चाहता है तो बांदी के साथ भी वो निकाह कर सकता है। लेकिन जरूरी है कि उस शख्स के आकद में पहले कोई आजाद औरत ना हो, यानी एक शख्स के आकद में निकाह में एक आजाद औरत मौजूद है और उसके बाद वो एक बांदी से निकाह करना चाहता है, इसकी इजाजत नहीं है भाई। लिहाजा आजाद औरत के निकाह में होते हुए बांदी के साथ निकाह जायज नहीं। लेकिन इसका अगर बरअक्स कर लें, किसी शख्स के निकाह में बांदी है और वो अब आजाद औरत से निकाह करना चाहता है तो ये जायज है भाई, क्योंकि अदना के बाद वो किससे निकाह कर रहा है, आला से यानी आजाद से, तो ये जायज है। तो यहां पर भी किसी के जहन में ये शुबा आ सकता है कि फूफी तो है आला क्योंकि वो उसूल की तरफ है, बाप की बहन है, खाला तो है आला क्योंकि वो मां की बहन है, उसूल की तरफ है, और नीचे जो भांजी और भतीजी है वो तो अदना है, वो तो इनकी औलाद की तरह है भाई, क्योंकि भाई बहनों की औलाद भी अपनी औलाद की तरह होती है। तो लिहाजा किसी के जहन में शुबा आ सकता था कि आला के ऊपर अदना के साथ निकाह जायज नहीं होता, लेकिन अदना के ऊपर आला के साथ निकाह जायज होता है। लिहाजा अगर एक शख्स के आकद में एक औरत है और वो इस औरत की फूफी या खाला से निकाह करना चाहता है तो भतीजी या भांजी अदना होती है और इनके बाद किसको लाना चाहता है, फूफी या खाला को, तो अदना के ऊपर आला वो ला सकता है। लेकिन अगर इसके शख्स के आकद में एक औरत है और वो इसकी औरत की भांजी या भतीजी से भी निकाह करना चाहता है, यानी फूफी और खाला के होते हुए उस औरत की भतीजी या भांजी से निकाह करना चाहता है, ये तो आला के बाद अदना का लाना हुआ और ये तो जायज नहीं। तो हदीस में दोनों का जिक्र आ गया कि नहीं भाई, आला या अदना को नहीं देखना, बस ये दो औरतें जिनमें भतीजी या फूफी वाला रिश्ता हो या खाला और भांजी वाला रिश्ता हो, इनको एक शख्स अपने अक़्द निकाह में जमा नहीं कर सकता। और इसकी वजह भी साहिब हिदाया ने बतलाई थी, वजह यह कि फूफी और भतीजी में या खाला और भांजी में मोहब्बत होती है भाई, और जब कोई शख्स इन दोनों को अपने निकाह में लाएगा तो ये एक दूसरे की सौकने बन जाएंगी और सौकनों के अंदर तबअन नफरत और बुग़्ज़ होता है। तो लिहाजा वो जो मोहब्बत वाला रिश्ता था इस निकाह की वजह से वो खराब हो गया, वो कतई ताल्लुक तक ले गया, कतई रहमी तक ले गया, और शरीयत वो तो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म देती है, वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म देती है, वहां कतई रहमी या कतई ताल्लुक की इजाजत नहीं। तो लिहाजा ये निकाह हमें कहां तक पहुंचाएगा, कतई रहमी तक, यूं को कतई ताल्लुक तक पहुंचाएगा, और शरीयत तो कतई ताल्लुक की इजाजत नहीं देती, लिहाजा इसलिए यह निकाह जायज नहीं। फिर यहां इश्काल होता था कि आपने हमें कहा कि फूफी और भतीजी को जमा करना हराम है एक शख्स के अकद में, खाला और भांजी को एक शख्स के अकद में जमा करना हराम है, भाई इनका जिक्र तो कुरान में कहीं नहीं आया, कुरान में तो इनका जिक्र नहीं है, तो ये तो आप हदीस के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती कर रहे हैं। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि भाई ये हदीस खबर मशहूर है और खबर मशहूर के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज है। और मैंने आपको बतलाया था खबर मशहूर से मुराद उलमा उसूल फिका वाली खबर मशहूर है, एक खबर मशहूर है मुहद्दिसीन वाली और एक खबर मशहूर है उलमा उसूल फिका वाली, दोनों में फर्क है भाई। उलमा हदीस जो हैं वो हदीस की तकसीम सुनाई करते हैं, यानी दो किस्में बनाते हैं कि हदीस या खबर मुतवातिर होगी या खबर वाहिद होगी। और खबर मुतवातिर जिसके रिवायत करने वाले हर जमाने में इतने अफराद हों कि अकल उनके इज्तिमा अलल कज़िब को महाल समझे, अकल आपको बतला दे कि इतने लोग झूठ पर जमा नहीं हो सकते भाई, जब इतने लोग हर हर जमाने में इसको नकल करने वाले हैं तो बात ऐसी ही है। जैसे कुरान भाई, कुरान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हर हर जमाने में इतने ज्यादा लोग नकल करने वाले हैं कि उनका इज्तिमा अलल कज़िब महाल है, इतने लोग झूठ पर जमा नहीं हो सकते भाई। मालूम हुआ ये वही कुरान है जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, इसमें एक हर्फ की भी कमी बेशी नहीं है भाई। तो ये खबर मुतवातिर है और इसके मुकाबले में खबर वाहिद दूसरी किस्म है। मुहद्दिसीन के नजदीक दो ही किस्में हदीस की, या खबर मुतवातिर होगी या खबर वाहिद। खबर वाहिद भी कहते हैं, खबर आहाद भी कहते हैं, दोनों इसी के नाम हैं। खबर वाहिद जो है फिर उसकी तीन किस्में हैं, खबर मशहूर, खबर अजीज और खबर गरीब। खबर मशहूर वो खबर वाहिद है जिसके रिवायत करने वाले किसी जमाने में तीन से कम ना हो, जबकि खबर अजीज या हदीस अजीज वो है जिसके रिवायत करने वाले किसी एक जमाने में या हर जमाने में दो हों भाई, कितने हों, दो हों। और खबर गरीब वो है जिसके रिवायत करने वाले किसी एक जमाने में या हर जमाने में एक हो भाई। तो मालूम हुआ इंद अल मुहद्दिसीन ये खबर मशहूर खबर वाहिद की किस्म है, और जबकि उसूलीन जो है वो हदीस की तकसीम सुलासी करते हैं, तीन किस्में बनाते हैं कि हदीस जो है या तो वो खबर मुतवातिर होगी या खबर मशहूर होगी या खबर वाहिद होगी। खबर वाहिद होगी, खबर मुतवातिर की तो वही तारीफ कि जिसके रिवायत करने वाले हर जमाने में इतने अफराद हों कि अकल उनके इज्तिमा अलल कज़िब को महाल समझे। और खबर मशहूर वो है कि जिसके रिवायत करने वाले पहले जमाने में तो इतने ज्यादा नहीं, मसलन एक या दो सहाबा से मरवी है, लेकिन आगे ताबईन और तबई ताबईन के जमाने में उस हदीस को शोहरत हासिल हो गई, मशहूर हो गई, उस जमाने में उसको रिवायत करने वाले सैकड़ों लोग मौजूद हैं या हजारों लोग मौजूद हैं। ताबईन और तबई ताबईन के जमाने में उसको रिवायत करने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो ये खबरें मशहूर है। ये खबरें मालूम हुआ इसको उम्मत ने कबूल कर लिया है कि ये इसी तरह है, बात ऐसी ही है। तो ये खबरें मशहूर है और याद रखो सहाबा सारे के सारे आदिल हैं भाई। जब सहाबी एक हदीस को रिवायत कर रहा है मालूम हुआ बात ऐसी ही है, बात समझ में आ गई। जबकि खबर वाहिद वो है कि जिसके रिवायत करने वाले सहाबा के बाद के जमाने में शोहरत को न पहुंचे भाई, एक या दो रिवायत कर रहे हैं या कम लोग रिवायत कर रहे हैं। तो हासिल कलाम यह हुआ कि मुहद्दिसीन के नजदीक खबर मशहूर खबर वाहिद ही है, क्योंकि वो उसकी किस्म है ना। जैसे जैसे कलिमा की कितनी किस्में हैं, इसम, फेल और हर, तो हर किस्म को आप कह सकते हैं ये कलिमा है, इसम कलिमा है, फेल कलिमा है, हर कलिमा है, तो हर एक पर कलिमा का लफ्ज बोल सकते हैं क्योंकि ये कलिमा की किस्में हैं। और इसी तरह ये मुहद्दिसीन के नजदीक खबर मशहूर, खबर अजीज, खबर गरीब ये खबर वाहिद की किस्में हैं, तो इनमें से हर एक को खबर वाहिद कह सकते हैं क्योंकि ये उसी की किस्में हैं। खबर मशहूर भी क्या है, खबर वाहिद, खबर अजीज भी क्या है, खबर वाहिद, और खबर गरीब भी क्या है, खबर वाहिद, क्योंकि ये उस खबर वाहिद ही की किस्में हैं। जबकि फुकहा मैंने बतलाया वो सुलासी तकसीम करते हैं, फुकहा के नजदीक एक खबर मुतवातिर है, एक खबर मशहूर है और एक खबर वाहिद है भाई। तो खबर मशहूर और खबर वाहिद एक दूसरे के मुकाबले में है, जो खबर मशहूर है वो खबर वाहिद नहीं और जो खबर वाहिद है वो खबर मशहूर नहीं है भाई, फर्क समझ में आया
जी।
अच्छा, तो खबर मशहूर जब उम्मत ने उसको कबूल कर लिया सहाबा के बाद वो शोहरत की हद तक पहुंच गई, तो मालूम हुआ बात ऐसी ही है। बात, तो इसको खबर मशहूर कहेंगे। हां अलबत्ता मुतवातिर से इसका दर्जा कम ही है। बहरहाल भाई खबर मुतवातिर उसके तो हर जमाने में नकल करने वाले इतने ज्यादा लोग होते हैं, जबकि खबर मशहूर में, खबर मशहूर जो है वो सहाबा के जमाने के बाद फिर शोहरत की हद तक पहुंच गई। तो ये इसका मकाम भी बड़ा आला है, लेकिन बहरहाल खबर मुतवातिर वाला मकाम नहीं है। बात समझ में आ गई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको जाब्ता बतलाया था कि किन दो औरतों को अकद में जमा करना जायज है और किन को जमा करना जायज नहीं। बतलाया कि वो दो औरतें कि उनमें से हर एक को बारी बारी मर्द फर्ज करें तो उनका आपस में निकाह जायज ना हो, यानी दोनों तरफ से हुरमत आ रही हो, तो इन दो औरतों को कोई एक शख्स अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। जैसे बहनें हैं भाई, बहनों में से देखो एक को मुजक्कर फर्ज करें तो क्या रिश्ता हुआ आपस में, बहन भाई वाला, और बहन भाई का निकाह आपस में हराम होता है। तो लिहाजा देखो एक तरफ से हुरमत आ गई। अब दूसरी बहन को जरा मुजक्कर फर्ज करो, ये उसी तरह मुअन्नस है और दूसरी क्या है मुजक्कर, अब भी वही भाई बहन वाला रिश्ता आया तो देखो अब भी निकाह आपस में जायज नहीं। तो मालूम हुआ हुरमत दोनों तरफ से आ रही है, इसीलिए शरीयत ने दो बहनों को निकाह में जमा करने से मना फरमाया है। इसी तरह फूफी और भतीजी को जरा देख लें, फूफी और भतीजी को देख लें, जरा फूफी को मर्द तसव्वुर करें। फूफी किसको कहते हैं, बाप की बहन। ये मुअन्नस के बजाय अगर मुजक्कर हो तो बाप का भाई हुआ और गोया चचा हुआ, और दूसरी तरफ कौन है भतीजी, और चचा पर भतीजी हराम होती है क्योंकि वो उसके भाई की औलाद है और भाई की औलाद भी अपनी औलाद की तरह होती है, उनसे निकाह की कोई सूरत नहीं। तो देखो हमने फूफी को मर्द तसव्वुर किया तो उसका निकाह भतीजी से हराम है। अब जरा भतीजी को मर्द तसव्वुर करो और फूफी को उसी तरह मुअन्नस रहने दो। भतीजी को मर्द तसव्वुर किया तो इस मर्द पर अपनी फूफी हराम है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने मना फरमाया है कि फूफी और खालाएं क्या है इंसान पर हराम है। तो देखो भतीजी को भी मर्द तसव्वुर किया तो भी हुरमत आ रही है, तो दोनों तरफ से हुरमत आ रही है। लिहाजा फूफी और भतीजी इनको किसी एक शख्स के निकाह में जमा करना जायज नहीं। इसी तरह खाला और भांजी भी हैं भाई। जाब्ता समझ में आ गया, क्या जाब्ता, कि वो दो औरतें कि उनमें से हर एक को बारी बारी मर्द फर्ज करें तो उनका आपस में निकाह हराम हो, तो इन दो औरतों को कोई एक शख्स अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता। और फिर आपको बतलाया था साहिबे हिदाया ने कि एक शख्स जो है वो अपनी बीवी के पहले खावंद की बेटी से निकाह करना चाहता है। मसलन एक शख्स के अकद में एक औरत है, लेकिन ये औरत पहले जैद की बीवी थी भाई, और उस जैद की एक बेटी है वो किसी और बीवी से है, इस बीवी से नहीं, वो जैद की बेटी किसी और बीवी से है। तो ये शख्स जिसके अकद में ये औरत है जो पहले जैद की बीवी थी, अब ये शख्स इसके साथ वो जैद की बेटी को भी जमा करना चाहता है तो कहते हैं ये जमा कर सकता है, इनको जमा करना जायज है, क्योंकि इस औरत में और वो जो इसके पहले खावन की बेटी है ना तो इनमें रिजात वाला कोई रिश्ता है और ना कोई और करीबी रिश्ता इनमें मौजूद है। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इन दो औरतों को भी कोई शख्स निकाह में जमा नहीं कर सकता। वजह यह कि अगर उस पहले खावन की बेटी को मर्द फर्ज किया जाए उसका इस औरत से निकाह हराम हो जाता है, क्योंकि यह औरत उसके बाप की बीवी रह चुकी है। और आपने पढ़ा था कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, जिन औरतों से तुम्हारे आबा ने निकाह किया है उनसे तुम निकाह न करो भाई। तो मालूम हुआ पहले खावंद की बेटी को मर्द फर्ज करें तो ये औरत उस पर क्या है, हमेशा हमेशा के लिए हराम। तो एक तरफ से हुरमत आ रही है, लेकिन हम कहते हैं एक तरफ से हुरमत काफी नहीं, दोनों तरफ से हुरमत होनी चाहिए। अगर इस औरत को मर्द फर्ज करें तो इसका उस लड़की से निकाह जायज है, क्योंकि वो लड़की इसकी सौतेली बेटी हुई। क्या हुई, सौतेली बेटी हुई, इसके खावंद की बेटी है, इसको अब हमने मर्द फर्ज कर लिया तो ये इसकी सौतेली बेटी हुई, और सौतेली बेटी से भी निकाह की गुंजाइश होती है। देखो ये मसला पहले बयान हो चुका, मैंने आपको बतलाया था भाई, फिर सुनो, ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، نکاح کرتے ہی عورت کی ماں فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ حرام، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جبکہ اس عورت کی بیٹی اس وقت حرام ہوگی جب اس عورت سے صحبت کر لے گا. بات سمجھ میں آگے؟ تو معلوم ہو سوتیلی بیٹی کب حرام ہوگی؟ جب اس بیوی سے صحبت کر لے گا. معلوم ہوا سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح کی گنجائش ہوتی ہے جب تک اس کی جو ماں ہے اس کے ساتھ خاوند نے صحبت نہیں کی. تو مسئلہ چل رہا تھا، ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس عورت کا جو پہلا خاوند ہے اس کی ایک بیٹی ہے کسی اور بیوی سے، یہ شخص اس عورت کے ساتھ اس کے پہلے خاوند کی بیٹی کو جمع کرنا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں جمع کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ حرمت ایک طرف سے آ رہی ہے، دونوں طرف سے حرمت نہیں آ رہی. اور پھر کل میں نے بتلایا تھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نکاح کے لیے مانع بنتی ہیں، اور میں نے بتلایا کہ نکاح سے مانع جو ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں بھائی، نسب ہے، سبب ہے، جمع ہے، حق الغیر ہے، اور دین ہے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بھائی. دیکھو خلاصہ ہے سب کا، کیا کیا ہے؟ نسب. بعض عورتیں نسب کی وجہ سے انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے وغیرہ. اور بعض چیزیں جو ہیں وہ سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں، اور سبب دو ہیں، رضاعت اور سہوریت. سہوریت سواد کے ساتھ ہے بھائی. رضاعت کی وجہ سے بھی حرمت آ جاتی ہے جیسے نسب کی وجہ سے حرمت آتی ہے. رضاعی ماں بھی انسان پر حرام اور اس کی اولاد بھی انسان پر حرام ہے بھائی. اور اسی طرح بعض جگہ حرمت سسرالی رشتے کی وجہ سے آ جاتی ہے، جیسے میں نے بتایا ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں اس پر حرام، کیونکہ وہ اس کی ساس بن گئی. اور اس عورت سے جب صحبت کر لے گا تو اس عورت کی جو بیٹی ہے یعنی پہلے خاوند سے، وہ بھی اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام. تو نکاح سے مانع ایک تو نسب ہے، دوسرا سبب ہے، اور سبب کے اندر کیا کیا آ گئے؟ رضاعت بھی آ گئی اور سہوریت یعنی سسرالی رشتہ بھی آ گیا. اور تیسرا ہے سبب جمع، یعنی دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کوئی شخص. اور اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی کوئی شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا بھائی. تو یہ تیسرا مانع ہے جمع بھائی. بعض اوقات یہ جمع مانع بن جاتی ہے، اور بعض اوقات جو مانع ہوتا ہے وہ غیر کا حق ہوتا ہے. غیر کا حق، مثلا ایک عورت زید کی منکوحہ ہے، اب اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا بھائی، کیونکہ یہ زید کا حق ہے. یہ عورت کس کا حق ہے؟ زید کا حق ہے، اس کی منکوحہ ہے، اس کے نکاح میں ہے، لہذا کوئی اور اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ہاں اگر زید نے اس عورت کو طلاق دے دی یا زید کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور نکاح کر سکتا ہے. تو دیکھو اس عورت سے، یہ جو زید کی منکوحہ ہے مثلا، اس سے بھی نکاح حرام ہوا. کیا وجہ؟ مانے کیا چیز ہے؟ حق الغیر، کہ یہ غیر کا حق ہے. اور اسی طرح بعض اوقات مانے جو ہے وہ دین ہوتا ہے. آپ نے پڑھا کہ اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، لیکن اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور دین ہے عورت کا، یعنی وہ آسمانی دین کا انکار کرتی ہے. مثلا وہ عورت مجوسی ہے یا بت پرست ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں. تو جیسے صرف اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے، تو صحبت بھی صرف اہل کتاب باندیوں سے ہی جائز ہے بھائی. باندی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ صرف اسی صورت میں آقا کے لیے صحبت جائز ہوگی جب وہ اہل کتاب میں سے ہو باندی، اور اگر وہ باندی بت پرست ہے یا آتش پرست ہے تو آقا کے لیے اس سے صحبت جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے آج کے سبق پر. کہتے ہیں وَمَن زَنَا بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الزِّنَا لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لِأَنَّهَا نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَحْظُورِ. بھئی دیکھیے، آپ نے پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ساس بن گئی. اور جب یہ شخص اپنی اس بیوی سے صحبت کر لے گا तो इस बीवी की जो बेटी है वो भी इस शख्स पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई। तो खावन पर बीवी के उसूल और फुरू जो हैं वो हराम होते हैं। इसी तरह याद रखो, बीवी पर खावन के उसूल और फुरू हराम हो जाते हैं। ये औरत जो है इसको अगर ये खावन तलाक दे दे और बाद में ये औरत अपने इस साबका खावन के बाप से या इसके बेटे से निकाह करना चाहे तो कोई सूरत नहीं है। तो मियां बीवी पर एक दूसरे के उसूल और फुरू हराम होते हैं। याद रखो, इसको कहते हैं हुर्मत मुसाहरत। क्या कहते हैं? हुर्मत मुसाहरत। मुसाहरत का माना है ससुराली रिश्ता और हुर्मत का माना है हराम होना, या इसका माना कर लें एहतराम भाई, जो भी तर्जमा आपको मुनासिब लगे। तो हुर्मत मुसाहरत का माना हुआ ससुराली रिश्तों का एहतराम, या इसका माना कर लें ससुराली रिश्तों का हराम होना। तो देखो, ये जो हलाल ताल्लुक था मियां बीवी के दरमियान, दोनों के दरमियान ये जो निकाह हुआ और सोहबत हुई, इसकी वजह से दोनों पर एक दूसरे के उसूल और फुरू हराम हो गए। इसी तरह इंदल अहनाफ, जब कोई शख्स किसी औरत से जिना कर ले तो जिना करते ही इस औरत के उसूल और फुरू इस शख्स पर हराम हो गए। इसी तरह इस शख्स के उसूल और फुरू जो है इस औरत पर हराम हो गए। यह शख्स अब बाद में इस औरत की मां से या बेटी से किसी वक्त निकाह करना चाहता है, नहीं भाई, अब ये हमेशा हमेशा के लिए तुम पर हराम हो चुके हैं। और इसी तरह ये औरत बाद में इस शख्स के बाप से या इसके बेटे से निकाह करना चाहती है, नहीं भाई, अब वहां निकाह की कोई सूरत नहीं है भाई। तो ये है हुर्मत मुसाहरत। तो इंदल अहनाफ, जैसे ये हुर्मत मुसाहरत हलाल रिश्ते की वजह से यानी निकाह और खावंद के सोहबत करने की वजह से आ जाती है, इसी तरह ये जो हुर्मत मुसाहरत है ये हराम ताल्लुक यानी जीना की वजह से भी आ जाती है। और याद रखो, इंदल अहनाफ ये बड़ा नाजुक मसला है भाई, ये हुर्मत मुसाहरत वाला। जीना तो छोड़ो, ये सिर्फ अगर कोई शख्स किसी औरत को शहवत से हाथ लगा दे तो भी हुर्मत मुसाहरत आ जाएगी। मसलन एक शख्स ने एक औरत के हाथ पर अपना हाथ रख दिया शहवत के साथ, दरमियान में कोई हाइल और कोई रुकावट नहीं थी, यानी दरमियान में कोई कपड़ा वगैरह नहीं था, बराह रास्त हाथ के ऊपर हाथ रखा शहवत के साथ, तो हुर्मत मुसाहरत आ गई। इस औरत के उसूल और फुरू अब इस मर्द पर हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गए, अब वहां निकाह की कोई सूरत नहीं है। और इसी तरह इस मर्द के उसूल और फुरू जो है इस औरत के लिए हमेशा के लिए हराम हो गए, अब वहां निकाह की कोई सूरत नहीं है भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो हुर्मत मुसाहरत है ये हलाल ताल्लुक की वजह से तो आएगी, मियां बीवी के उसूल और फुरू तो एक दूसरे पर हराम होंगे, लेकिन जिना जो फेले ममनू है, फेले हराम है, उसकी वजह से यह हुर्मत मुसाहरत नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि हुर्मत मुसाहरत अल्लाह की नेमत है भाई, और हराम काम की वजह से नेमत और इनाम नहीं मिलता। हराम काम तो सजा का मूजिब है, उसकी वजह से तो सजा मिला करती है, उसकी वजह से हुर्मत मुसाहरत जैसी नेमत और इनाम नहीं मिलेगा भाई। बात समझ में आ रही है? तो हम कहते हैं नहीं, जिना की वजह से भी हुर्मत मुसाहरत आ जाएगी। और हमारे फुकहाए अहनाफ ने गौर किया कि हुर्मत मुसाहरत की वजह क्या है, ये मियां बीवी पर एक दूसरे के उसूल और फुरू क्यों हराम होते हैं। फुकहा ने गौर किया तो इस इल्लत तक पहुंचे कि दरअसल ये मियां बीवी जो है इनके दरमियान जो सोहबत है वो बच्चे तक पहुंचाने वाली है। इस सोहबत के नतीजे में औलाद हासिल होती है, और औलाद जो होती है वो खावंद का भी जुज है और बीवी का भी जुज। मियां बीवी ने सोहबत की भाई, और इससे क्या हासिल होगी? औलाद, बच्चा हासिल होगा, और वो बच्चा खावंद का भी जुज है और बीवी का भी जुज है, इसीलिए तो दोनों की तरफ निस्बत की जाती है। कोई किसी वक्त पूछे कि ये बच्चा किसका है तो मसलन कह देते हैं ये जैद का बच्चा है, देखो पूरे बच्चे की निस्बत जैद की तरफ कर दी, और कभी पूरे बच्चे की निस्बत बीवी की तरफ कर देते हैं कि ये किसका बच्चा है, वह कहते हैं मसलन ये जैनब का बच्चा है। तो देखो, बच्चा दोनों का जुज है भाई, खावंद का भी जुज और बीवी का भी जुज, तो बच्चे में आकर दोनों के जुज मिल गए, यानी खावंद और बीवी में इत्तेहाद आ गया, खावंद और बीवी एक फर्द के दर्जे में हो गए, खावंद और बीवी एक फर्द के दर्जे में हो गए। तो जो खावंद के उसूल फुरू हैं वो बीवी के भी उसूल फुरो बन गए, और जो बीवी के उसूल फुरो हैं वो खावंद के भी उसूल फुरो बन गए। यानी यूं कहो कि जैसे इंसान पर अपने उसूल और फुरो हराम होते हैं, जैसे खावंद है, खावंद पर अपने उसूल और फुरो हराम है, लेकिन बच्चे में इत्तेहाद हुआ खामंद और बीवी के दरमियान, दोनों एक शख्स के दर्जे में हो गए, तो जो बीवी के उसूल और फुरो हैं वो भी खावंद के अपने उसूल और फुरो की तरह हो गए, और जब ये खावंद के अपने उसूल और फुरो की तरह हो गए तो अपने उसूल और फुरो तो इंसान पर हराम होते हैं, इसलिए वो भी इस पर हराम हो गए। बात समझ में आ रही है? भाई देखो ना, मियां बीवी के दरमियान ये सोहबत कहां तक पहुंचाएगी? औलाद तक। बच्चा पैदा होगा और बच्चा बाप का भी जुज है और मां का भी जुज है। अब जरा एक तरफ से देखो, ये बच्चा खावंद का जुज है और इस बच्चे का एक जुज बीवी की तरफ से भी है, गोया बीवी भी इस बच्चे का जुज हुई। तो बच्चा जुज हुआ खावंद का और बच्चे का जुज क्या हुआ? बीवी, यानी वो जो मां है उसकी बीवी, उसका जुज हुई। तो बीवी जो है खावंद के जुज का जुज हुई। बीवी क्या हो गई? खावंद का जुज, जो बच्चा है उसका जुज हो गई। और जुज का जुज भी अपना ही जुज होता है। यूं कहो, अपने जुज का जुज भी अपना ही जुज होता है। मसलन मेरा हाथ जो है ये मेरा जुज है, और इस हाथ का एक जुज उंगली है, तो उंगली मेरे जुज का जुज हुई, और अपने जुज का जुज भी अपना जुज होता है। तो ये उंगली भी मेरी अपनी है, मेरा अपना जुज है, क्योंकि अपने जुज का जुज अपना जुज होता है। तो बीवी क्या हुई? खावंद के बच्चे का जुज, और बच्चा क्या है? खावंद का अपना जुज। तो बीवी क्या बन गई? खावंद के अपने जुज का जुज बन गई। तो बीवी भी गोया खावंद का जुज बन गई। जब बीवी खावंद का जुज बन गई तो बीवी के उसूल फुरो खावंद के भी उसूल फुरो बन गए, दोनों एक फर्द के दर्जे में हो गए। बीवी क्या बन गई? खावंद का जुज बन गई। और अब बीवी की तरफ से देखो, ये बच्चा किसका जुज? बीवी का अपना जुज। ये बच्चा बीवी का अपना जुज बीवी की तरफ से हम देख रहे हैं, और इस बच्चे का एक जुज किसकी तरफ से? खावंद की तरफ से। तो खावंद भी इस बच्चे का जुज हो गया। तो ये बच्चा जो बीवी का अपना जुज है, इसका एक जुज खावंद हो गया। तो ये बीवी के अपने जुज का जो जुज है वो भी बीवी का अपना जुज है, तो खावंद भी बीवी का अपना जुज हो गया। तो यानी दोनों में इत्तेहाद आ गया, दोनों फर्दे वाहिद के हुक्म में हो गए। खावंद जो है बीवी का जुज बन गया और बीवी खावंद का जुज बन गई, गोया एक ही फर्द के दर्जे में हो गए। तो लिहाजा खावंद के उसूल फुरो बीवी के उसूल फुरो बन गए, और बीवी के उसूल फुरो खावंद के उसूल फुरो बन गए। तो इसलिए दोनों पर एक दूसरे के उसूल फुरो हराम हो गए, क्योंकि वो उनके अपने उसूल फुरो बन गए। बात समझ में आ रही है? तो खावंद और बीवी जो है उनमें इत्तेहाद आ गया भाई, इनमें दोनों के जुज मिल गए बच्चे में, और दोनों में इत्तेहाद आ गया। तो दोनों शख्स वाहिद के हुक्म में हो गए, और शख्स वाहिद पर उसके उसूल और फुरो हराम होते हैं। तो खावंद पर बीवी के उसूल और फुरो हराम हो गए, क्योंकि वो उसके अपने उसूल और फुरो बन गए, और बीवी पर खावंद के उसूल और फुरो हराम हो गए, क्योंकि वो उसके अपने उसूल और फुरो हो गए। बात समझ में आ गई? तो आइंदा लखनाफ, जिस तरह हलालवती जो है वो वलद तक पहुंचाने वाली है, और उसकी वजह से फिर मियां बीवी में क्या आ जाता है? इत्तेहाद आ जाता है। इसी तरह ये जो हरामवती है ये भी बच्चे तक पहुंचाने वाली है। वलद हो या ना हो उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन ये वती, ये जो जिना है, ये हरामवती है, ये भी कहां तक पहुंचाने वाली है? यही वती बच्चे तक भी पहुंचा देती है। तो ये जो हरामवती है ये भी वलद का सबब है, और वलद के अंदर वाती और मोतुआ के अज्जा में इत्तेहाद आ जाता है, वो एक दूसरे के जुज बन जाते हैं, और उन पर एक दूसरे के उसूल और फुरू हराम हो जाते हैं। तो जिस तरह हलाल वती से यह हुरमत मुसाहरत आती है, इसी तरह हराम वती से भी यह हुरमत मुसाहरत आएगी, क्योंकि हराम वती भी सबब है वलद का। जैसे हलाल वती सबब थी वलद का, इसी तरह यह हराम वती भी सबब है वलद का। बात समझ में आ रही है? वलद हो या ना हो इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन यह वती है सबब किसका? ये वती पहुंचाने वाली है कहां तक? वलद तक पहुंचा सकती है। तो यह वलद का सबब है, और वलद की वजह से वाती और मौतुआ में इत्तेहाद आ जाता है, वो दोनों एक दूसरे का जुज बन जाते हैं। तो ये जानी और मजनिया जो है ये भी एक दूसरे का जुज हो गए भाई। ये भी क्या हो गए, एक दूसरे का जूस हो गए, तो इस हराम वती की वजह से भी हुरमत मुसाहरत आ जाएगी। बल्कि इंदल अहनाफ हराम वती छोड़ो, दवाई वती जो है उनकी वजह से भी हुरमत मुसाहरत आ जाएगी, जैसे मैंने बयान किया। अगर कोई शख्स किसी औरत को बिला हाइल के शहवत के साथ छू ले तो वहां भी हुरमत मुसाहरत आ जाएगी। दवाई वती यानी वो चीजें जो वती की तरफ इंसान को ले जाने वाली हैं, यानी शहवत से हाथ लगाना या बोसा ले लेना, ये भी क्या है, हुरमत मुसाहरत का सबब है। बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई किताब पर कहते हैं, वमन जना बिमरातीन, और जिस शख्स ने जिना किया किसी औरत से, हरुमत अलैहि उम्मुहा व बिंतुहा, तो हराम हो जाएगी उस शख्स पर उस औरत की मां और उसकी बेटी। वकाल शाफियु रहमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अज़ज़िना ला यूजिबु हुरमत अल मुसाहरति, ला यूजिबु ऐ ला युस्बितु, जिना जो है वो साबित नहीं करता हुरमत मुसाहरत को, लिअन्नहा निअमतुन, क्योंकि हुरमत मुसाहरत निअमत है, फला तो नालु बिल महजूर, लिहाजा इसको पाया नहीं जा सकता, इसको हासिल नहीं किया जा सकता, बिल महजूर ऐ बिल ममनूई, महजूर का क्या माना है, ममनू भाई, महजूर ज़ा के साथ है भाई तौज़ा, तो ये ममनू को कहते हैं। आपने फिका का मशहूर जाबता सुना होगा, अज़रूरतु तुबीहुल महजूरात भाई, अज़रूरतु तुबीहुल महजूरात, जरूरत जो है वो मुबाह कर देती है, जायज कर देती है अल महजूरात, ममनू चीजों को भाई। भाई बास चीजें ऐसी होती हैं कि शरान उनको हराम होना चाहिए, उनको ममनू होना चाहिए, लेकिन जरूरत की वजह से शरीयत उसकी इजाजत दे देती है। और याद रखो, जरूरत से हर जरूरत नहीं मुराद, वरना तो फिर हर शख्स कहेगा कि मुझे इस मसले में यूं जरूरत है, बल्कि जरूरत से मुराद वो जरूरत है जो फुकहा बयान फरमाए भाई, यानी जिसके सिवा चारा ना हो भाई, वो है जरूरत। बात समझ में आ गई। तो वो फरमाते हैं, फला तो नालु बिल महजूरी, कि ये नियमत है इसको ममनू फेल के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। वलना, और हमारी दलील ये है कि अनलवत असबबुल जुज़ियती, कि ये जो वती है सबबुल जुज़ियती, ये जुज होने का सबब है, यानी वाती और मौतुआ एक दूसरे का जुज बन जाएंगे, वाती और मौतुआ एक दूसरे का जुज बन जाएंगे, क्योंकि ये वती कहां तक पहुंचाएगी, बच्चे तक, और बच्चा दोनों का जुज है, और बच्चे में दोनों के जुज मिल गए तो दोनों एक दूसरे का जुज बन गए भाई। तो कहते हैं, वलना, हमारी दलील यह है कि अनलवत असबबुल जुज़ियति, कि वती जो है ये जुज होने का सबब है, यानी वाती और मौतुआ में, बिवासितातिल वलदी, किसके वास्ते से, वलद के वास्ते से, क्योंकि ये वती वलद तक पहुंचाने वाली है। हत्ता युज़ाफु इला कुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा कमला, भाई यहां पर भी याद रखिए, यह हत्ता नसब नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको बतलाया कि हत्ता के नसब देने के लिए, यानी हत्ता के बाद अन के मुकद्दर होने के लिए दो शर्तें हैं भाई। एक शर्त यह है कि हत्ता का मा बाद वो माकबल की निस्बत से मुस्तकबिल होना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि वहां हत्ता सबबियत या गाया का फायदा दे रहा हो, और यहां ये शर्तें पूरी नहीं हैं, लिहाजा हत्ता नसब नहीं देगा। तो कहते हैं, हत्ता युज़ाफु इला कुल्लि वाहिदिन मिन्हुमा कमला, यहां तक कि निस्बत की जाती है उस बच्चे की इन दोनों में से हर एक की तरफ, कमला पूरे तौर पर, यानी पूरे बच्चे की कभी निस्बत मां की तरफ कर दी जाती है कि ये उसका बेटा है, और कभी पूरे बच्चे की निस्बत बाप की तरफ कर दी जाती है कि ये उसका बेटा है। फयसीर उसूलुहा वफुरुउहा का उसूलिही वफुरुइही, तो हो जाएंगे उसूलुहा व फुरूहा, उस औरत के जो उसूल और फुरू हैं वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, का उसूल ही व फुरू ही, जैसे कि उस वो वाती के उसूल और फुरू हैं। जब दोनों में इत्तेहाद आ गया तो वाती के उसूल और फुरू जो हैं वो मौतुआ के उसूल और फुरू बन गए, और मौतुआ के जो उसूल और फुरू हैं वो वाती के उसूल और फुरू बन गए भाई। ये माना है, फयसीर उसूलुहा व फुरूहा का उसूल ही व फुरूही, तो उस औरत के उसूल और फुरू जो हैं वो इस वाती के उसूल और फुरू की तरह हो जाएंगे। वकद وَكَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ اور اسی طرح برعکس صورت میں بھی ہوگا. یعنی یہ تو ہم نے کیا کہا عورت کے اصول و فروع کس کے بن جائیں گے, عورت کے اصول و فروع مرد کے اصول و فروع بن جائیں گے, اور اس کا برعکس یعنی مرد کے جو اصول و فروع ہیں وہ عورت کے اصول و فروع بن جائیں گے. تو جب عورت کے اصول و فروع مرد کے اصول و فروع بن گئے اور اپنے اصول و فروع تو آدمی پر حرام ہوتے ہیں اس لیے اب وہ بھی مرد پر کیا ہو گئے حرام, اور مرد کے اصول و فروع جو ہیں وہ عورت کے اصول و فروع بن گئے تو یہ عورت کے اپنے اصول و فروع بن گئے اور اپنے اصول و فروع انسان پر حرام ہوتے ہیں. بھائی آگے دیکھیے بھائی والاستمتاع بالجزء حرام الا فی موضع الضرورة. بھائی دیکھیے یاد رکھو ضابطہ, بھائی ضابطہ یاد رکھو, استحقاق حرمت میں اصل جز ہے, استحقاق حرمت میں اصل جز ہے, یعنی اصل میں جز جو ہے وہ حرمت کا مستحق ہے. جز کو حرام ہونا چاہیے. بھائی ایک شخص ہے اس کی اپنی اولاد وہ اس کا جز ہے, کیا وہ اپنی اولاد سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں, اپنی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اپنی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ حرمت کی مستحق ہے. اب یہاں اعتراض ہوتا ہے, اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ ولد دونوں کا جز ہے, جب دونوں کا جز ہے تو دونوں میں اتحاد آ گیا تو خاوند بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاوند کا جز بن گئی اور اپنا جز تو انسان پہ حرام ہوتا ہے, لہذا پھر تو موتوعہ کو واتی پر حرام ہو جانا چاہیے یا اسی طرح بیوی کو خاوند پہ حرام ہو جانا چاہیے. ایک ہی دفعہ صحبت کرنے کے بعد صحبت پائی گئی یا نہیں, اور یہ صحبت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ بچے تک. اور بچے میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ دونوں کا جز ہوتا ہے تو اس میں دونوں کے جزوں کے درمیان اتحاد آ گیا تو خاوند کیا بن گیا؟ بیوی کا جز, اور جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے تو بیوی پر خاوند کو حرام ہو جانا چاہیے ایک ہی وتی کے بعد. یا اسی طرح مثلا یہ بچہ کس کا ہے؟ خاوند کا ہے, تو یہ خاوند کا جز ہوا اور اس بچے کا ایک جز کس کی طرف سے؟ بیوی کی طرف سے, تو بیوی بھی اس کا جز ہے تو گویا بیوی خاوند کا جز ہو گئی, اور جب بیوی خاوند کا جز ہے تو جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے, لہذا ایک صحبت کے بعد ہی بیوی کو انسان پر کیا ہو جانا چاہیے؟ حرام ہو جانا چاہیے. یا اسی طرح اگر زنا والا فعل ہے, فعل ممنوع ہے, تو وہاں بھی وہ جو موتوعہ ہے اس کو اس زانی پر حرام ہو جانا چاہیے, حالانکہ بیوی تو انسان پر حرام نہیں ہوتی. بیوی کیا ایک صحبت سے حرام ہو جاتی ہے؟ بیوی تو انسان پر حرام نہیں ہوتی. بھئی بیوی کے اصول و فروع انسان پر حرام ہوئے ہیں, خود بیوی حرام نہیں, لیکن آپ کے ضابطے کے مطابق اے احناف آپ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ صحبت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اولاد تک, اور اولاد میں میاں بیوی کے درمیان کیا آیا؟ اتحاد آیا, دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے, جب ایک دوسرے کا جز ہوئے تو ان کو ایک ہی وتی کے بعد ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, استحقاق حرمت میں اصل جز ہے, جز کو حرام ہی ہونا چاہیے, لیکن الضرورت تبیح المحظورات, ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہے. تو یہاں جو بیوی کو خاوند کے لیے شریعت نے مباح رکھا کہ بیوی سے صحبت جائز ہے, ضابطے کے مطابق تو حرام ہونی چاہیے, لیکن شریعت حرام قرار نہیں دیتی وہ ضرورت کی بنا پر, وہ ضرورت کی بنا پر, ورنہ تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا ایک ہی صحبت کے بعد وہ عورت بھی حرام اور اصول و فروع بھی حرام ہو جائیں گے, اور اسی طرح ایک ہی صحبت کے بعد بیوی پر اس خاوند کے اصول و فروع بھی حرام ہو جائیں گے اور خاوند بھی حرام ہو جائے گا. تو لہذا ضرورت تھی, احتیاج تھی, اور ضرورت کی بنا پر شریعت جو ہے ممنوع چیز کو مباح قرار دے دیتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ میاں بیوی اسی لیے ایک دوسرے کے لیے مباح ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں والاستمتاع بالجزء حرام, اور جز سے نفع اٹھانا حرام ہے, الا فی موضع الضرورت, مگر ضرورت کے محل میں, ضرورت کی وجہ سے شریعت مباح کر دیتی ہے. اور ضابطہ کیا میں نے بتلایا؟ الضرورت تبیح المحظورات, محظور میں نے بتلایا, محظور کا معنی ہے ممنوع, کہ ضرورت جو ہے وہ مباح قرار دے دیتی ہے المحظورات اے الممنوعات, ممنوع چیزوں کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیے کہتے ہیں وہی الموتوعۃ, اور وہ کیا ہے؟ موتوعہ. پھر دیکھیے والاستمتاع بالجزء حرام, اور جز سے نفع اٹھانا حرام ہے, الا فی موضع ضرورت, مگر जरूरत के मकाम में कि वहां जिससे नफा उठा सकते हैं वही अल मौतूआतु, और वो कौन है? वो मौतूआ है जिससे वती की गई है। वो अगरचे जुज बन गई है लेकिन जरूरत की बिना पर वो मुबाह है भाई। हासिल इश्काल से दोबारा सुन लें, हासिल इश्काल ये हुआ कि ए अहनाफ, आपने हमें क्या जाब्ता बताया कि ये वती पहुंचाने वाली है वलद तक, और वलद में आकर खामंद और बीवी का इत्तेहाद हो गया, दोनों एक दूसरे का जुज बन गए, लिहाजा इसलिए दोनों पर एक दूसरे के उसूल फुरू हराम हो गए क्योंकि वो उनके अपने उसूल फुरू बन गए। तो इस पर इश्काल होता है, ए अहनाफ ये आपकी अजीब दलील है, उसूल फुरू तो आप कह रहे हैं हराम हो गए, हालांकि जाबता है कि इस्तेहकाक हुरमत में असल जो है वो जुज होता है। इस्तेहकाक हुरमत यानी हराम होने का जो मुस्तहिक है वो असल में जुज होता है। तो बच्चा किसका जुज? खावंद का जुज। और बच्चे का एक जुज किसकी तरफ से? बीवी की तरफ से। तो बीवी भी क्या हो गई? खावंद का जुज हो गई। तो जब बीवी खावंद का जुज हो गई तो फिर तो बीवी को भी तो हराम होना चाहिए खावंद पर। आपने उसूल और फुरू को तो हराम करार दे दिया और जो इस्तेहकाक हुरमत में असल है यानी जुज उसको नहीं हराम करार दे रहे। इश्काल समझ में आ रहा है? क्या इश्काल हुआ कि बीवी खावंद का जुज बन गई और जुज तो इंसान पर क्या होता है? हराम। तो बीवी को भी क्या होना चाहिए? हराम। आप जुज को हराम करार नहीं दे रहे और उसूल और फुरू को हराम करार दे रहे हैं, तो यह कैसी दलील है? यहां तो फिर आपकी इस दलील के मुताबिक जैसे मियां बीवी पर एक दूसरे के उसूल और फुरू हराम है, एक ही वती के बाद एक ही सोहबत के बाद मियां बीवी को भी एक दूसरे पर हराम हो जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने वती कर ली, और यह वती कहां तक पहुंचाने वाली है? बच्चे तक, और बच्चे में दोनों के अज्जा क्या हो जाएंगे? मुत्तहिद हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का जुज बन गए, और जब जुज बन गए एक दूसरे का तो जुज तो इंसान पर हराम होता है, जैसे अपना बेटा बेटी इंसान पर क्या है? हराम है। अपना पोता पोती, अपना नवासा नवासी इंसान पर क्या है? हराम है, क्योंकि ये जुज है इंसान के। तो अपने इस्तेहकाक हुरमत में असल कौन होता है? जुज। तो आपने उसूल फुरू को तो हराम करार दे दिया और बीवी जो जुज बन गई है उसको हराम करार नहीं दिया। इसी तरह खावंद बीवी का जुज बन गया तो खावंद को भी बीवी पर क्या हो जाना चाहिए? हराम हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आपने मियां बीवी के उसूल फुरू को तो उन पर हराम करार दे दिया लेकिन खुद मियां बीवी को भी तो फिर एक दूसरे पर हराम हो जाना चाहिए एक ही वती के बाद। इसी तरह जानी और मजनिया जो हैं उनमें भी एक ही वती के बाद दोनों के उसूल फुरू भी एक दूसरे पर हराम होने चाहिए, और जानी और मजनिया दोनों उनको खुद भी यानी वाती और मौतुआ उनको भी एक दूसरे पर हराम हो जाना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि वो एक दूसरे पर हराम नहीं। इसी तरह आप कहते हैं मियां बीवी एक दूसरे पर हराम नहीं। तो साहिब हिदायत उसका जवाब देते हैं कि भाई अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, कि जरूरत जो है वो ममनू चीजों को मुबाह कर देती है। असल जाब्ता तो यही था, मियां बीवी को भी एक दूसरे पर हराम हो जाना चाहिए, वाती और मौतुआ को भी एक दूसरे पर हराम हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वहां हाजत थी, जरूरत थी, वहां हाजत थी और जरूरत थी, क्योंकि इस तरह तो जहां भी वती पाई जाएगी और वाती और मौतुआ एक ही वती के बाद एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे तो इंसान अपना घर कैसे बसाएगा भाई? एक ही वती के बाद बीवी खावंद पर हराम हो रही है और खावंद बीवी पर हराम हो रहा है तो फिर आगे औलाद का सिलसिला कैसे चलेगा भाई? तो लिहाजा वहां चूंकि हाजत थी, जरूरत थी, और इस जरूरत की बिना पर फिर शरीयत ने वाती और मौतुआ को एक दूसरे पर हराम करार नहीं दिया। वरना जाब्ता तो यही बनता है कि इस्तेहकाक हुरमत में असल जुज है, जब एक दूसरे का जुज बन गए तो दोनों को एक दूसरे पर हराम हो जाना चाहिए था। बात समझ में आ गई? ये माना है वल इस्तिमताउ बिल जुज के हराम, और जुज से नफा उठाना हराम है, इल्ला फी मौज़िउ ज़रूरति, मगर सिर्फ जरूरत के महल में, वही अल मौतुअतु, और वो क्या है? मौतुआ है, यानी उसमें जरूरत है, उसके सिवा चारा नहीं है भाई। वो अगरचे जुज बन गई है लेकिन जरूरत की बिना पर वो मुबाह है भाई। वलवत मुहर्रिम मिन हैसु इन्नहु सबबुल वलदी ला मिन हैसु इन्नहु जिना। अब ये जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील का। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया था कि हुरमत मुसाहरत जो है जिना के जरिए नहीं आ सकती क्योंकि जिना फ़िअल महज़ूर है, फ़िअल ममनू है, और हुरमत मुसाहरत तो नियामत है, और नियामत जो है वो फ़िअल ममनू के जरिए हासिल नहीं हो सकती, फ़िअल हराम के जरिए हासिल नहीं हो सकती। तो हम जवाब देते हैं कि ये जो वती है इसमें दो हैसियतें हैं, एक हैसियत से देखें तो ये फ़िअल महज़ूर है, जिना है, फ़िअल ममनू है, और दूसरी हैसियत से देखें तो ये वती सबब है वलद का, ये वती कहां तक पहुंचाने वाली है, वलद तक पहुंचाने वाली है। तो इस वती के अंदर दो हैसियतें हैं, एक हैसियत से ये फेले महजूर यानी जिना है, और दूसरे एतबार से ये वती वलद का सबब है, और ये जो इस वती की वजह से हुरमत मुसाहरत आई है वो इस फेले महजूर यानी जिना होने की हैसियत से नहीं आई बल्कि वलद का सबब होने के एतबार से यह हुरमत आई। तवज्जो है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि जिना, जिना तो फ़िअल हराम है और फ़िअल हराम के जरिए नियामत हासिल नहीं हो सकती। हम जवाब देते हैं कि ये जो वती है इसमें दो हैसियतें हैं, एक हैसियत से देखें तो ये फ़िअल जिना है, दूसरी हैसियत से देखें तो ये सबब है वलद का। तो हम इस वती को हुरमत मुसाहरत का सबब करार देते हैं कि इस वती की वजह से, ये जो हराम वती है इस वती की वजह से भी हुरमत मुसाहरत आएगी, लेकिन इस हैसियत से नहीं कि ये जिना है बल्कि इस हैसियत से कि ये वलद तक पहुंचाने वाली है। बात समझ में आ गई। ये इसी तरह है जैसे मिट्टी, भाई मिट्टी देखो अपनी जात के एतबार से मुलविस है, चीजों को आलूदा करती है, चीजों को गंदा कर देती है मिट्टी, लेकिन यही मिट्टी जब पानी के कायम मकाम हो जाती है तो मुताहिर बन जाती है, और पानी ना हो तो आप तयमुम करते हैं और पाक हो जाते हैं। भाई बात समझ में आ रही है। तो ये मिट्टी अपनी जात के एतबार से ये मुलविस है, चीजों को आलूदा करने वाली है, और इस हैसियत से कि ये पानी के कायम मकाम है ये मुताहिर है। भाई तो इसी तरह यहां ये जो वती की जो फ़िअल ज़िना है इसमें भी दो हैसियतें हैं, एक हैसियत से देखें तो ये फ़िअल ममनू है, फ़िअल हराम है, ज़िना है, और दूसरी हैसियत से देखें तो ये वती कहां तक पहुंचाने वाली है, वलद तक पहुंचाने वाली है। तो इस हैसियत से कि ये वती वलद तक पहुंचाने वाली है, इस हैसियत से यह हुरमत मुसाहरत का सबब बनेगी। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वल वतु मुहर्रिमुन मिन हैसु इन्नहु सबबुल वलदी, और ये वती जो है मुहर्रिमुन हराम करने वाली है, ये वती हराम करने वाली है, यानी वाती और मौतुआ दोनों पर एक दूसरे के उसूल और फुरू क्या हो गए, हराम, क्या आ गई, हुरमत मुसाहरत आ गई। तो ये वती जो है मुहर्रिम है यानी हराम करने वाली है उसूल और फुरू को दोनों के एक दूसरे पर, मिन हैसु इन्नहु सबबुल वलदी, इस हैसियत से कि ये वती जो है वलद का सबब है, इस हैसियत से यह मुहर्रिम है, इस हैसियत से यह हुरमत मुसाहरत का सबब है, ला मिन हैसु इन्नहु ज़िना, इस हैसियत से नहीं कि ये वती ज़िना है। भाई बात समझ में आ गई। तो ये जवाब जिक्र किया साहिब हिदाया ने। बाज उलमा ने इसका एक और बड़ा प्यारा जवाब दिया जी। वो फरमाते हैं, वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह को जवाब देते हुए फरमाते हैं कि आपने क्या कहा, हुरमत मुसाहरत नेमत है। हम कहते हैं नहीं, हुरमत मुसाहरत नेमत नहीं है, मुसाहरत नेमत है। क्या? मुसाहरत, ससुराली रिश्ता होना नेमत है। हुरमत मुसाहरत का तो क्या माना, ससुराली रिश्तों का हराम होना। भाई जब कुछ रिश्ते हराम हो जाएंगे ये तो निकाह का दायरा तंग हो जाएगा। निकाह का दायरा वसीय होना नियामत है या उसका तंग होना नियामत है, वसीय होना नियामत है। तो लिहाजा आपने क्या कहा था, हुरमत मुसाहरत नियामत है। हम कहते हैं नहीं, यूं ना कहें बल्कि मुसाहरत नियामत है, हुरमत नियामत नहीं है। और यहां ये जो हराम वती है इसकी वजह से हुरमत आई है, मुसाहरत नहीं आई। इस हराम वती की वजह से मुसाहरत नहीं आई। ये जिस औरत से जिना किया तो क्या इसके उसूल और फुरू वो इस आदमी के ससुराली रिश्तेदार बन गए? नहीं भाई, ससुराली रिश्तेदार नहीं बने, मुसाहरत नहीं आई यहां। हां हुरमत आ गई। क्या आ गई? हुरमत आ गई। और हुरमत तो नेमत नहीं है भाई, नेमत तो मुसाहरत है, और मुसाहरत तो यहां आई नहीं है बल्कि क्या आई है, हुरमत आई है। और हुरमत भी ये गोया एक दर्जे की सजा है कि निकाह का दायरा तंग हो गया। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम क्या, साहिब हिदाया ने क्या जवाब दिया कि ये जो वती की है इस वती में दो हैसियतें हैं, एक हैसियत से ये जीना है फेले हराम है और दूसरी हैसियत से ये सबब वलद है, तो ये वती वलद का सबब होने के एतबार से इससे हुरमत मुसाहरत आ रही है, फेले हराम होने की हैसियत से इसे हुरमत मुसाहरत नहीं आ रही। जबकि बाज़ उलमा ने और जवाब दिया, वो क्या फरमाते हैं कि हुरमत मुसाहरत नियामत नहीं है बल्कि दोनों को अलग अलग करें, मुसाहरत नियामत है, हुरमत नियामत नहीं है बल्कि मुसाहरत नियामत है, और ये जो हराम वती है इसकी वजह से मुसाहरत नहीं आई बल्कि हुरमत आई है, तो लिहाजा फेले हराम की वजह से नियामत आई नहीं। ये जो जिना किया इसकी वजह से मुसाहरत यानी नियामत तो नहीं आई बल्कि क्या आई है, हुरमत आई है, लिहाजा आपका एतराज खत्म हुआ। आपने क्या कहा था कि फेले हराम उसके जरिए नियामत हासिल नहीं हो सकती, तो हम भी कहते हैं हां फेले हराम के जरिए नियामत हासिल नहीं हो सकती, यहां मुसाहरत यानी नियामत आई नहीं है बल्कि यहां तो सिर्फ हुरमत आई है। बात समझ में आ गई, मसला हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।